कपिल के घर आते ही बीजी ने उसके सामने शिकायत दर्ज की। तेरी बीवी तो अपने को बड़ी चतुर समझती है, अपने आगे किसी की चलने नहीं देती, खड़ी खड़ी जवाब टिकाती है। कपिल को गुस्सा आया। शिखा को एक अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए, खास तौर पर माँ के आगे। इसने घर को कॉलेज का डिबेटिंग मंच समझ रखा है और माँ को प्रतिपक्ष का वक्ता। उसने कहा, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से बहस नहीं करेगी। उल्टी खोपड़ी की है बिल्कुल, वो समझ ही नहीं सकती, माँ ने मुंह बिचकाया। रात उसने कमरे में शिखा से कहा, तुम माँ से क्यों उलझती रहती हो दिन भर? इस बात का विलोम भी उतना ही सच है। हम विलोम अनुलोम में बात नहीं कर रहे हैं, एक संबंध है जिसकी इज्जत तुम्हें करनी होगी, गलत बातों की भी। माँ की कोई बात गलत नहीं होती, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। कपिल तैश में आ गया। तुमने माँ को इनपरफेक्ट कहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमेशा ज्यादा बोल जाती हो और गलत भी। तुम मेरी आवाज बंद करना चाहते हो, मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं। शिखा अंदर तक जल गई इस उत्तर से, क्योंकि ये उत्तर हजार नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों के क्लिप से दबाया और सोचा, अब वो बिल्कुल नहीं बोलेगी, यहां तक कि ये सब उसकी आवाज को तरस जाएंगे। लेकिन ये निश्चय उससे निभ न पाता। बहुत जल्द कोई न कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता कि वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती और एक बार फिर बदजुबान कहलाई जाती। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता, घर में जैसे टॉयलेट होता है, ऐसे एक टॉयलेट भी होना चाहिए जहां खड़े होकर वो अपना गुबार निकाल ले, जंजीर खींचकर बातें बहाते और एक सभ्य शांत मुद्रा में बाहर आ जाए। उसे ये भी बड़ा अजीब लगता कि वो लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें उसके इस भारी भरकम शब्दकोश की जरूरत ही नहीं है। घर तो सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ दो शब्दों की दरकार थी, जी और हाँ जी। कल छोले बनेंगे? जी छोले बनेंगे। पाजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए। उसने अपने जैसे कई स्त्रियों से बात करके देखा, सब में अपने घर बार के लिए बेहद संतोष और गर्व था। हमारे तो ये ऐसे हैं, हमारे तो ये वैसे हैं जैसा कोई नहीं हो सकता, हमारे बच्चे तो बिल्कुल लवकुश की जोड़ी हैं, हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज है कि पूछो ही मत। शिखा को लगता उसी में शायद कोई कमी है जो वो इस संतोष में लबालब भर कर मेरा परिवार महान ये राग नहीं अलाप सकती। रातों में बिस्तर में पड़े पड़े वो देर तक सोती नहीं, सोचती रहती है उसकी नियति क्या है। न जाने कब कैसे वो एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई, जबकि उसने जिंदगी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी थी। कितना अजीब होता है कि दो लोग बिल्कुल अनोखे अकेले अंदाज में इसलिए नजदीक आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कद्र करते हों, और महज इसलिए टकराएं क्योंकि अब उन्हें मौलिकता बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे थे। ये खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यही उम्मीद थी। उसकी जिंदगी का रूटीन ढर्रा उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अलग सवेरे वो कॉलबेल की पहली कर्कश ध्वनि के साथ जग जाता और रात 12 के टन टन घंटे के साथ सोता। बीजी घर में इसी रूटीन की चौकीदार तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा सी भी देर सवेर उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। शिखा जैसे तैसे रोज के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता, हाथ मुंह धो कपड़े बदल एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी। उसके सभी काम, आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बीची का हिदायतनामा शुरू हो जाता। ये आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है तू? ऐसे कहीं घर चलता है? ससुर 1940 में सीखा हुआ मुहावरा टिका देते, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह। हिदायतें सही होती पर शिखा को बुरी लगती। वो बेमन से झाड़ू झाड़न पोचे का रोज नामचा हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब कागज और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल घर के कामों में उसकी मदद करता, बीजी उसे टोक देती, ये औरतों वाले काम करता तो अच्छा लगता है, तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। घर में एक सहज और सघन संबंध को लगातार ठोंक पीट कर यांत्रिक बनाया जा रहा था। एकांत में जो भी तन्मयता पति पत्नी के बीच जन्म लेती, दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि परिवार का संचालन बढ़िया कर रही है। वे बेटे से कहती, तू फिकर मत कर, थोड़े दिनों में मैं इसे एन पटरी पर ले आऊंगी। पटरी पर शिखा तब भी नहीं आई जब दो बच्चों की माँ हो गई। बस इतना भर हुआ कि उसने अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चों की तरफ कर लिया। बच्चे अभी कई सवालों का जवाब देने लायक समझदार नहीं हुए थे, बल्कि लाड़ प्यार में दोनों के अंदर एक तर्कातीत तुनक मिजाजी आ बैठी थी। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाने सुनते, आपस में मारपीट करते और जैसे तैसे अपना होमवर्क पार लगाकर सो जाते।